जुग जुग में भटकाए, राम दीवाना राम समाए, मैं दीवाना सोई। ए दुनिया के सुखो दूर हटो, दुनिया के सबो किनार लगे हो, अब हम परमात्मा पद में आराम कर रहे हैं, हम ईश्वरी पद में जा रहे हैं। ए संसारी सत्ता, ए संसारी शराब, ए संसारी धन की शराब, सत्ता की शराब, बोतल की शराब, अब दूर हटो, तुम्हारी जरूरत नहीं, अब हम राम नाम की शराब पी रहे हैं, हम ज्ञान की शराब पी रहे हैं। वे चाहते सब झोली भर लें, या मेरी रंग दे चुनरिया, राम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, मेरे दिल की चुनरिया रंग दे मेरे हरी, ध्यान के रस पे मेरा रोम रोम रंगा जा रहा है, नीली में रंगाऊंगी, पीली में रंगाऊंगी, हरी में रंगाऊंगी, तेरे रंग से रंग दे चुनरिया, तेरे ब्रह्मानंद से मेरे दिल की चुनरिया रंग दे मेरे राम। ऐसी रंग कि रंग न छूटे, देवी भये चाहे सारी उमरिया, शांतिया मेरी रंग दे चुनरिया, हरि हरि बोल, वाह वाह, हरि ओम ओम ओम, मेरा बोले रोम रोम, खूब प्रसन्नता के साथ दो घड़ियां कीर्तन करेंगे, वाह वाह। Thank you.
से सारी उम्र भगवान सब में है, सब रूपों में वही है, ऐसा उसने चिंतन किया, दूसरों को उपदेश भी दिया। वो पड़ गए बीमार। हकीमों ने कहा कि अब एक बूंद भी अगर पानी पिलाते हो पंडित जी तक को तो फिर हाथ धोने पड़ेंगे। पंडित का लगा प्यास। कुटुंबियों को कहा देखो डॉक्टरों ने हकीमों ने मना किया है पानी पीने का, शरबत पीने का, एक बूंद भी प्रवाही पदार्थ नहीं लेने का। अब रहा नहीं जाता, तरबूज लाओ, इसका खब तो रस निकालो तरबूज का और बुलाओ उस ब्राह्मणों को, पवित्र भक्तों को, और उनको पिलाओ। सारा जीवन जो सुनाया है सुना है उसका अनुभव करना है। और लोग पीते गए और उनको एहसास होता गया प्यास मिट गई, इम्पॉसिबल नहीं। और दूसरी बात, सच पूछो तो ये शरीर के जितने वर्ष हुए उतना ये वर्षगांठ शरीर की मनाना, मैं देह हूँ ये पक्का करना है। बर्थडे तक देह शरीर का मनाना ही नहीं चाहिए। उन पुरुषों का मनाओ जिनके आने से दूसरों का कल्याण हुआ है, कृष्ण को राम का मनाओ ठीक है। बाकी है अपना अपना के बापू आज मेरा बर्थडे है, आज तेरा बर्थडे क्या है, तेरे ढोगले का है। ये समझ ले कि इस बॉडी का बर्थडे है तो जितने वर्ष हुए हैं उतने बल को फेरा फेरोगे, इतने तो खत्म हुए, बाकी न जाने कितने रहे। डोगले की यात्रा है, शरीर की यात्रा है, शरीर का जन्म हुए, शरीर के वर्ष हुए, हमारा जन्म नहीं हुआ, ऐसा समझना चाहिए। नहीं तो कभी कभी तो तुम अपना मनाओ न मनाओ, तुम्हारे कुटुंबी मनाए, पड़ोसी मनाए, माँ बाप मनाए, लेकिन फिर भी अगर असावधान रहे तो देहाध्यास पक्का हो जाएगा, ये और जोखम है। दो आदमी मनाते तो उतना जोखम, 100 मनाए तो और जोखम ज्यादा, तुम लोग हजारों मनाओ तो हमको और ज्यादा जोखम। हमारे लिए तो जोखम का प्रयोग है, हमारे लिए तो खतरा है और क्या है। बापू हैप्पी बर्थडे टू यू, केक काटो। अगर गुरु महाराज की कृपा नहीं होती तो हम समझते कि हाँ सचमुच 43 साल हुए, हम 42 हुए, अब मेरा जन्मदिन आ रहा है। लेकिन गुरु महाराज की प्रसादी है, मैं तुम्हारे चरणों की कसम खा के खाता हूँ, कहता हूँ, अपनी कसम खा के बोलता हूँ कि हमारा जन्म ही नहीं, और तुमको मनाना है तो जाके मनाओ। आनंदमय माँ का बर्थडे मनाया जा रहा 65वां बुलावे पार्क, कोई भक्त के यहाँ माँ पधारी थी। जो कुछ होता है आयोजन, आयोजक लोग करते ही हैं कुछ न कुछ उत्सव जैसा। अब भीड़ इकट्ठी हो गई, दूर दूर से लोग आए। फिर वो तो संत थी आनंदमय माँ, इंदिरा गांधी की गुरु, बोला भाई आप इतने इकट्ठे हो गए सब, कोई भगवान की चर्चा करो, पूछो कोई सवाल सत्संग का। लोगों को लगा कि इस माने संत के वचन मिलते हैं, संत का दर्शन मिलता है, चलो। दिनकर राव करके रिटायर्ड पोस्टमास्टर थे, वो मुलर के थे कप्पड़ बन के, वो जरा विद्वान थे, समझ सत्संगी भी थे, दूसरों को सत्संग सुनाते भी थे। लोगों ने सब ने उसको तैयार किया कि तुम ऐसा कुछ प्रश्न पूछो कि माता जी एक दो घंटा बोलती रहे ताकि अपने कान पवित्र होते रहे और अपना ज्ञान बढ़ता रहे। ऐसा प्रश्न पूछो कि उत्तर उसको देने में माता जी को जरा लंबा समय चले। तो विद्वान तो था ही वेदांत का, कुछ साधन भजन वाला भी आदमी था, उसने सोच के प्रश्न पूछ लिया। बोले माता जी आपका जन्म हुआ तब से लेकर आज 64वां वर्ष हुआ है, आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या वैराग्य हुआ, क्या आया क्या गया, बस जन्म से लेकर अभी तक का आपका जीवन चरित्र आपके मुख से सुनना चाहते हैं, बस ये हमारा प्रश्न है। बोले पिताजी मेरा जन्म ही नहीं हुआ, ये उत्तर है हमारा। मेरा जन्म ही नहीं हुआ, जन्म होता है देह का, आत्मा का जन्म नहीं होता, घड़े का जन्म होता है, आकाश का नहीं होता। घड़े में जो आकाश आता है ना उसको घटाकाश बोलते हैं। तो घड़े बनने का तो तिथि तारीख हो सकता है, लेकिन घड़े में आकाश आया क्या, तो था ही ऐसे ही जिसको बोध हो जाता है उसको पता चलता है कि हमारा कभी जन्म नहीं और मृत्यु भी नहीं, लेकिन जिस देह के द्वारा इस तत्व का पता लगा उसका लोग आदर करो अनादर करो, वो उनका पुण्य है, उनका भाग्य है, उनके प्रारब्ध उनका मौज है। इसलिए आसाराम के तरफ से कोई आमंत्रण नहीं, कोई इनवाइट नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई प्लान नहीं, और समिति जाने तुम जाने। नाटक करना है तो करो, ना करना है तो ना, कोई नॉट नेसेसरी फॉर मी। ओके नहीं देखो भाई आप समझ गए ना, अब गर्मियों के दिन नहीं दूर से आना, कभी बच्चे मिलती नहीं मिलती है, उधर ही बैठ के प्रभात काल में और ध्यान ध्यान करोगे तो समझ लो हम राजी हो गए। उस दिन ध्यान में बैठना, हम भी इधर ध्यान में बैठेंगे सुबह, या मंगल रात को बैठना, हम भी इधर बैठेंगे। इधर बैठेंगे माना तुम्हारे दिल तक पहुंच सकते हैं इधर बैठे बैठे। ओम ओम तुमने तालियां तो बजा दी लेकिन समझे नहीं। जिन्होंने नाम दान लिया है अथवा जो इधर शिविर में ध्यान में आ गए हैं उन लोगों को अनुभव होगा कि स्वामी जी बर्थडे के दिनों में तो थोड़े गहरी यात्रा कर लेते हैं ठीक है, लेकिन तुम्हारे दिल में तो उसी दिन बैठते हैं ऐसी बात नहीं, जब शिविर में आ गए ध्यान में आ गए तब के बैठे हाँ, समझ लेना हाँ, कहें चाहे ना कहें लेकिन हिसाब सब रहता है हाँ, हिसाब सब रहता है कहें चाहे ना कहें। ऐसे कोई भी ऐसा कोई भी चेष्टा करो और फिर देखो, अगर प्रतिदिन ध्यान भजन करते हो तो फिर देखो, कईयों को अनुभव है, अब ये व्यक्तिगत बात कहना भी ठीक नहीं होता, फिर भी उस दिन आप लोग प्रातः काल को थोड़ा बहुत ध्यान करना तो अच्छा होता है, अपनी यात्रा होगी और क्या, इधर आना कोई जरूरी नहीं। और भोजन भोजन तो जो रूखा सूखा बनाएंगे, कोई ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, बड़ा लंबा चौड़ा उत्सव करना नहीं, ऐसे ही जो ऐसा होता है बुधवार है जरा रंगीला बुधवार कर देना, थोड़ा सा ज्यादा नहीं करना, थोड़ा सा करना, ऐसा मैं नहीं कहता थोड़ा करो, बहुत करते हो तो थोड़ा करना, थोड़ा करते हो तो मत करना, मेरा कहने का तात्पर्य है ऐसा नहीं कि थोड़ा करना, ऐसा मैं नहीं प्रेरणा देता हूं करो थोड़ा, बहुत करते हो तो थोड़ा करना और थोड़ा करते हो तो नहीं करना, क्यों भाई सबको बोल दो खड़े होकर, क्या छोड़ा जो घर तो रहा रिश्ता किसी से क्या, छोड़ अपने दिल भर को फिर मिलना किसी से क्या, तू बड़ी नबेल पड़ा अपने यार से खेल बाबा, हुआ तू फकीर तो फिर रहा नाता किसी से क्या। मरने के बाद आश्रम छोड़ना है तो जीते जी छोड़ दिया तो क्या हरकत, आई मौज फकीर की दिया झोंपड़ा को फूंक, डीसा छोड़ के चल दिए, सिद्धपुर का आश्रम छोड़ के चल दिए, ये छोड़ के चल दिया तो चल दिया, चला जाऊंगा ऐसा नहीं कहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आऊं तो कभी हो गया गए ऐसा नहीं, लेकिन अभी कभी कभी उसकी उसकी मर्जी होगी तो ऐसा हो जाए, तुम चिंता नहीं करना बाप जी क्यों गया, से एक्सीडेंट तो नहीं थयो हो, भूखा तो नहीं रहा हो, उसका हमारे हमारे शरीर के बारे में आप लोग चिंता नहीं करना, निश्चिंत भव। ओम 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 जिनका जगाना था उठाना था उत्साह देना था दे दिया, अब कोई आएगा जिसके भाग्य में होगा, जिसको चलना होगा चल पड़ेंगे, चलते रहेंगे। चलते रहेंगे। गाड़ी कब तक इंतजार करेगी पैसेंजरों का, हवाई जहाज कब तक इंतजार करेगा पैसेंजरों का, पक्षी कब तक एक डाल पर बैठेगा गीत गाता रहेगा, उसकी मौज आ गई यार की, कौन सी डाल पर कब छलांग मरवा दे वो उसकी मर्जी की बात। पक्षी गा रहा था, बड़े उसके मधुर गीत थे। किसी ने पूछा कि आप रोज इधर ही रहेंगे, कितने दिन तक रहेंगे, इसके बाद कहाँ जाएंगे। पक्षी ने कहा ये मुझे पता होता तो गीत ही नहीं गा सकता। आय साहब मेरे को तो पता नहीं है, तुम्हारी कसम मेरे को पता नहीं कि कहाँ वो ले जाना चाहता है, कब ले जाना चाहता है कोई पता नहीं, लेकिन सौंप दिया है तो आई एम रेडी। इधर तो अभी जागृत में तो इतने लोगों के बीच कुछ हो रहा है, तो चाहे क्या भी हो सूक्ष्म जगत का वो तो वही जाने, उसकी मर्जी जाने बाबा, अपन लोग क्या जाने। हवाएं उसकी ले रहे हैं, सूर्य के किरण उसी के पी रहे हैं, पानी उसी का पी रहे हैं, धरती उसी का यूज कर रहे हैं, तो हमारा बीच में है क्या। ये साग उसी खा है जो तेरी मर्जी को निगमा गाया कर, हम बीच में नहीं अड़चन होंगे। ये साग तेरा है, जहां रखना चाहे रखा कर, जो गीत गाना चाहे गाया कर, बजाना चाहे बजाया कर, हम बीच में अड़चन क्यों हूं। बस ऐसा है। ओम ओम ओम। कहीं जाके बोलना नहीं कहा कि बापू जता रहना चाहिए, जता रहना चाहिए ऊंधू मारो। आज बता दिया आज हमारे कैसा वैराग्य के भाव आ रहा था, तो तुम्हारे साथ आत्मीयता है तो हमने हृदय की बात बता दी। जरूरी नहीं कि मैं चला जाऊंगा, अज्ञात हो जाऊंगा तो मेरे को कोई दुख मिला है, कोई मेरे को कष्ट है, ऐसा नहीं है। लहर है देखो, दुनियादार जा सिर पटकते हैं, आशिक वहीं कदम रखते हैं। हम लोग जो संसार की चीजों के लिए सिर पटकते रहते हैं, भगवान के प्यारे उसको ठोकर मार के और आगे बढ़ते हैं। 124 दुकान है अभी, अब बापू मैं हरिद्वार जाऊंगा, भगवान का भजन करूंगा। मैं क्या खुशी की बात है, तो बापू हरिद्वार में खमन नहीं मिलती, उधर खमन की दुकान भी करूंगा, नौकर चलाएंगे, मैं भजन करूंगा। मैं क्या जाओ मत, इधर ही रहो तुम, केसरिया अटेज रहो। अब दो दो काम नहीं होते, एक तो तेरे साथ झूमते रहे और फिर संसार के नश्वर व्यवहार को भी संभालते रहे, अब दो दो काम नहीं होते। अब नहीं संभाल पाता दो दो काम। सच पूछो तो सब बोलने की भी इच्छा नहीं होती है, जबरदस्ती आप लोग आते हैं ना, तो आप लोग को कोई संकल्प यहां से कुछ निकलवा के बाकी वो बोलने की रुचि नहीं। मौन और मौन में भी बहुत कुछ मिलता है, आदान प्रदान होता है, ऐसा नहीं कि बोल लें तभी कुछ होता है, मौन में भी होता है। जो लोग ऊंची स्थिति के आ गए वो तो मौन से भी लाभान्वित होते हैं। ओम ओम। हरे गाली याद ही नहीं हो रहे साई कितरो कितरो नम तो लिंदो सा छा छा तंदा सो वही साई इंसा क्या। वाह वाह ठीक है, वक्त बहुत कीमती है, इसका जितना उपयोग करना चाहो कर लो, जितना निकल जाओगे निकल जाओगे। आज फिर पता नहीं मन कौन से चक्कर में डाल देवे। अभी जो सत्संग मिलता है ना, सत्संग बड़ा सहारा होता है, अच्छा तो टूक सा जन्मदिन पर जरा नहीं करो तो अच्छा करो तो हम मुकुट पहराते हैं, हार पहराते हैं, अगरबत्तियां जलाते हैं, धूप करते हैं, केक लाते हैं, ये बापू का स्वागत करते हैं, ऐसा तुम्हारा भाव है। लेकिन हम भगवान साक्षी रख के बोलता हूँ कि हमारे लिए ये सब शरारत लगता है। लेकिन बच्चा शरारत करते करते भी अगर चलना सीख जाए, बोलना सीख जाए, चलो उसके साथ टुकड़ा बोलो, झुक के चलो, नहीं तो क्या है, देह अभ्यास में आना, जन्मदिन मनाना है, फूंक मारना है, कोई हमारा है क्या? हम तो फूंक दिया सारे दुनिया का, तो मोमबत्ती को क्या फूंक मारते हैं? हम तो इंद्र के राज को भी फूंक दिया, तो मोमबत्ती को क्या फूंक मारना? जन्म मृत्यु को फूंक दिया गुरु महाराज की कृपा से, तो मोमबत्ती को फूंक मारना अब कहाँ बचा? ऐसा ही फूंक मारो, लो भाई मारो फूंक। केसरिया कहाँ कर्म के कर्ता बन जाते, उस अनंत के सब के सब हो रहा है, ठीक है, जो हो गया वो ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, जो होगा वो ठीक है। अड़चन नहीं होता वो, उसमें अपन लोग अड़चन हो जाते ना, कर्ता बन जाते तभी अड़चन होती है। अपना कर्ता न बने, उसको सौंप दे, हो रहा है करो मत, करो मत, करने वाला तो खोजे तो मिलेगा भी नहीं। ऐसे बेईमानी करते हैं हम लोग, माल तो किसी का, मालिक कोई बन जाता है। पांच भूत तो परमात्मा के हैं, और शरीर बना पांच भूतों से, तो शरीर तो हुआ परमात्मा का, तो शरीर के द्वारा जो कर्म हुए वो भी तो परमात्मा के हुए। अगर मैंने किया ले, अब बेईमान आदमी को चाहिए सुख, तो बेईमान ही है ना, हवा उसकी ले रहे। एक एक मिनट बना हवा को रुको तो जरा पता चले, ओ मेरा गोरी पुत्र तुझे मुंह बात से नक दबाए, एक मिनट तक केला लगे थे खत्म, एक मिनट दबाया था कम, एक मिनट भी बिना श्वास के तो रह नहीं सकते, तो श्वास इसे का लग रहे। हवा हमने तो बनाई नहीं, सूर्य हमने बनाया नहीं, जमीन हमने बनाई नहीं, माता पिता को भी हमने तो बनाया नहीं, माता पिता भी उसकी बनावट है और उसी से हमारा जन्म है, सब उसी का है। और फिर हम बोलते कि अपना आए है, मकान हमारो छे, आ छोकर हमारो छे, आश्रम हमारो छे, घर हमारो छे, पाप हमारो छे, पुण्य हमारो छे, तो ये सब बेवकूफी की भाषा है। अपन लोग ईश्वर से दूर होकर बेवकूफी मोल ले लेते हैं, फिर मरो हमारा हमारा कर दो, मरो हमारा मरा मरा बस हम मरा हमारा हमारा क्यों हम मरा मरे थे तुम्हारा हमारा तुम्हारा तुम्हारा हम मरा मर रहे हैं हम लोग। चलो तुम्हारा टाइम खराब होगा, जा हमारे तो बाहर उत्तम सहज रखता है, सहज अपने आप को हटा दे, उस अनंत को गीत गुंजाने दो, ऐसी व्यवस्था सबसे ऊंची है। वो तो साक्षात्कार करने पे होती है, उसके पहले नहीं होती है, तो फिर उससे थोड़ी नीची व्यवस्था क्या, धारणा ध्यान है, धारणा ध्यान में अपना समय लगा है, धारणा ध्यान समाधि, समाधि में बड़े में बड़े अड़चन है, वाणी पानी ज्यादा मिलने से योग योग समाधि का साधक है ना, उसकी यात्रा कम हो जाती है। ध्यान भजन के रास्ते में, समाधि के रास्ते में, ध्यान के रास्ते में मौन जो है ना बड़ा मददगार। अभी मौन मंदिर में 8 दिन रहा, सारी जिंदगी में वो सुख नहीं मिला होगा। क्या नाम है तुम्हारा? पंचाल। तुम्हारा? जीवन। सारी जिंदगी में आपको इतना आनंद नहीं आया होगा जितना इस 8 दिन में आया, ठीक है ना। तो आनंद कहाँ से आया कि जिस जो कुछ संसार का हमारा तुम्हारा का संस्कार भरे थे ना वो खाली हुआ, जितना ऐसा खाली हुआ उतना परमात्मा भर गया ऑटोमेटिक। घराना से जितना कचरा हम निकाल देते उतना आकाश लाना नहीं पड़ता, तो भर जाता भरा हुआ। ऐसे ही हम जितना एकांत में रहते हैं, ध्यान भजन में रहते हैं, एकांत में रहते रहते भी संकल्प विकल्प कम हो और पद्धति सर की साधना हो तो फिर आदमी ईश्वर प्राप्ति तो ये हो जाती। अगर अपना अहम सौंपने की तरकीब आ जाए, जो कुछ मिलता है मन मंदिर में सत्संग में उसको नाश न होने देना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। आहा वाणी उसका जितना हो सके सदुपयोग कम उपयोग करें तो यात्रा शीघ्र तय हो जाती है। ओम ओम ओम। हम कभी कभी सोचते हैं कि जब अपना सत्संग देखो, चेतीचंद देखो, शिविर देखो, उत्तरायण देखो, इतवार देखो, बुधवार देखो, जब देखा तो 12 बजे 12 से 2:30 के बीच ही अपना सब जमता है। कथा भागवत कहती है तो 9 से 12 और 3 से 6, लेकिन अपना रामायण के होते तब भी ऐसा और गीता के प्रवचन होते तो भी शाम को 6 बजे होते, लेकिन अपना जब जब सत्संग होता है जन आश्रम में तब देखा तो 12 से 3। क्यों? तो 12 बजे जन्म होगा था 2:30 बजे 9 से 12 से 3 सब होता रहता है जो है ऐसा है ना। देह का जन्म हुआ वो भी बोलते 12 बजे है, कितने बजे?
12 बजे
ठीक है। क्या बताओ और 2:30 बजे आसो दुसुद दो दिवस सम्मत दुसे की मध्यान 2:30 बजे अपना तो मध्यान में सब उसी लिए सत्संग में मध्यान में जमता है। देखो 2:30 बजे जमता है सत्संग, 12 से 2:30 के बीच सत्संग जवानी में होता है, फिर बुढ़ापा आ जाता है सत्संग। चलो ये विनोद की बातें हैं, आप लोग जाइए। ओम शांति शांति। आज का श्लोक यहाँ पूरा हो रहा है। देवी वेशा गुणमयी मम माया विरताया, ये देव की माया है 3 गुणों वाले, इसको करना कठिन है क्योंकि मिट्टी से मिट्टी लड़ाओ तो मिट्टी के एक गोला पूरी पृथ्वी से कैसे लड़ेगा। ऐसे 5 भूतों का अनंत 5 भूत है माया, उससे ये माया का जरा सा शरीर उसका बैल इसकी शक्ति मर्यादित है, और अब इसके बैल इसके शक्ति की योग्यता से यदि इसका इस माया को कर जाता हो असंभव है, इसलिए अनंत का सहारा लेना पड़ता है। अनंत का सहारा लेगा तो माया उसके आगे तो पीछे है, बलि का सहारा से तो निर्बल की विजय होती है। तो हमारा शरीर विशाल माया के आगे हमारा शरीर क्या है, हमारी बुद्धि क्या, हमारा मन क्या, अल्प है ना। और ये मना भी माया से है, 5 भूत का शरीर मन बुद्धि उनका ये सब तो माया का है। अब उससे विराट माया से क्या लड़ाओगे, इसको क्या करोगे? माया जिससे के आधार पर है वो तो परमात्मा की सत्ता भी तुम्हारे पास है, तो तुम अपना अहम हटा दो परमात्मा के करीब चले जाओ और माया उसके आगे तुच्छ हो जाती है। इसीलिए जो भगवान की शरण आता है, भगवान की शरण का मतलब ऐसा नहीं कृष्ण 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 या कृष्ण की मूर्ति के पैर पकड़ो, वो भी अच्छे हैं, लेकिन श्री कृष्ण का कहना है मेरी शरण। पुत्र देखो पुत्र दिखे तो पुत्र में भी मेरे को देखो, पिता में भी मेरे को देखो, घास दिख रहा है फूल दिख रहे हैं तो उसमें भी मेरी महक को देखो, नदियां बह रही है तो उसमें भी मेरे को देखो, चांद चमक रहा है तो उसमें भी मेरे को देखो। ये चीजें अनेक हो लेकिन उसके पीछे सत्ता एक है। जैसे आंख देखती है, कान सुनते हैं, नाक सुनता है, जीभ चखती है, जीवा त्वचा स्पर्श करती है, तो इसके काम तो अलग अलग है लेकिन अनुभव करने वाला तो एक है ना। देखा साधन अनेक, अनुभव करने वाला एक, ऐसे रूप अनेक, रूप का साक्षी एक, रंग अनेक, रंग का साक्षी एक, शब्द अनेक शब्द का साक्षी एक, स्पर्श अनेक स्पर्श का साक्षी एक, उस एक की शरण आ जाओ। और एक तो है सबके पास, एक 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 नहीं, आई प्लस आई प्लस आई आई नहीं होगा, आई प्लस आई ही हम हो जाएंगे। तो उस हमारे स्वरूप में स्थिर हो जाओ। तो हमारे स्वरूप में माना भगवान के स्वरूप में जो स्थिर हो जाता है तो वो कोई भगवान से फिर अलग नहीं दिखता है, भगवान रूप हो जाता है। जैसे एक लोटा पानी सागर में मिला दो तो अब सागर से लड़े स्टीमर आके तो खबर पड़े उसे, नहीं तो एक लोटा पानी के तो तुम कहीं भी नाश कर दो, कहीं भी बिचारों को रगड़ दो। और एक लोटा पानी सागर से मिल जाए फिर बोला आ जाओ जिसको आना है। जय जय ऐसे ही अपना मैं ईश्वर के नाम ही मिला है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। बड़ा आसान और कठिन भी ऐसा है कि तोबा तोबा, आसान होता तो सब कर लेते, और कठिन होता तो जनक को नहीं होता इतना जल्दी। उनको आ गया बात समझ में, आ गया कि यह ऐसा है, विजय होने की तरकीब है। फिर पंद्रहवा श्लोक कहता है, न माम दुष्कृति नो मूढ़ा तद्यंते नाराधमा माया अतहता ज्ञाना आसुरम भाव आश्रिता। आसुरी भाव को प्राणों को भी बोलते हैं, प्राणों को प्राण के साथ मन जुड़ा है, मन के साथ बुद्धि अहम जुड़ा है, उस मन बुद्धि और प्राणों के साथ जो मैं करके जी रहा है, ऐसे भाव को जो पा लिया वो उसका ज्ञान ढक गया। लेकिन मन बुद्धि और प्राणों को देखने वाले में जो स्थिर हो गया उसका ज्ञान जग गया। ये व्याख्या है, जाओ आराम को। बात समझ गए, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया? देखो समझ में आ गया तो ठीक है, कल्याण हो गया, जाओ। और नहीं समझ में आया तो फिर मेरा सिर क्यों खपाते हो, जाओ। समझ में आ गया तो जाओ, कल्याण हो गया। और नहीं समझ में आया तो फिर सिर उससे खपाना तो जाओ। ओम 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 ओम। नहीं समझ में आया तो भी बार बार सुनने से मनन होने लगता है। वेदांत कैसा है कि इसको बार बार सुना जाए तो भी कल्याण होता है, बहुत सुनने से मनन होने लगता है, बहुत सुना है तो मनन होने लगेगा, वही विचार है। और फिर बहुत विचार आएंगे तो फिर उसमें स्थिति होने लगेगी, स्थिति होने से कल्याण हो जाएगा। तो एक होती सेवा पूजा संसार का, वो क्रिया है, और दूसरा है भाव। क्रिया अच्छी करे तो अच्छा ही है, बुरी क्रिया बुरा, अच्छी क्रिया अच्छा, लेकिन क्रिया से भाव की कीमत ज्यादा है। भाव नजीक है, क्रिया बाहर रहती है, भाव भीतर रहता है। क्रिया बाहर रहती है, भाव भीतर रहता है। भाव फिर भाव करते करते फिर अनन्य भाव करो, दिखे अन्य अन्य लेकिन अन्य अन्य में भी एक का एक है, ऐसा भाव करते रहे तो अनन्य भाव हो गया, अनन्य भाव हो गया तो भी माया से तर गए। ले इतना आसान है, कठिन भी ऐसे ही है। दुरत्त कोई डिग्री में, कोई पद में, कोई स्वर्ग में, कोई किसी में उलझ गया, बड़े बड़ों को माया ने जेब में डाल दिया, बड़े बड़ों को। कठिन भी ऐसी है और आसान भी ऐसी। बड़ा सुनेरू बड़ा हिमालय है, हिमालय नहीं शुगर आलय है, मानो एक कीड़ी खड़ी है। अब हजार मील का एक बड़ा पहाड़, लाखों मील का एक पहाड़ कल्पना करो, उस पहाड़ शुगर का पहाड़ लाखों मील का बड़ा, उस पहाड़ का माप लेना चाहती है कीड़ी, उसका अनुभव करना चाहती है कैसा है। अब बाहर दौड़ती दौड़ती जाए, चलती चलती जाए तो उसकी सब पीढ़ियां खत्म हो जाएगी, तो भी माप नहीं होगी, उसका अनुभव नहीं होगा। लेकिन जहां खड़ी है, जिसके सहारे उसके पैर टिके हैं, वहीं जरा चोंच भर के देख ले और समझ ले कि बड़ी यही छेद ले कहीं भी ले।
ज्ञान बिना आत्मा नहीं, ज्ञान बिना जीवन नहीं।
चार बच्चे
त्याग हो जाए तो महान दुर्भाग्य की निशानी है। जिसको सत्संग मिल गया, सत्संग तो जितना सुने उतना कम, अधिक सुना है तो विचार सत्संगमय हो जाता है, सुनकर फिर उसका मनन करे तो बहुत लाभ होता है, खाली सुनकर रहे तो भी लाभ होता है। बुद्ध का कई वर्षों तक नापास हुआ स्कूल में, महामूर्ख था, सब लोग उसको चिढ़ाते थे, तो बड़ा बड़ा विद्वान हो गया, तो 10 बार नापास हुआ, शाबाश, ये तो बड़ा है लड़का, 10 बार नापास, बोले वाह 10 बार वाला आ गया। तो घर वाले कुटुंबी सब उसको बेइज्जती करने लगे, तो उसको बेचारे पे लगा, तेरा चोट घर बार छोड़ के जंगल में गया आपघात करने को, कुआं में डूब मरो। तो देखा कि रास्ते में जो कुआं था, गांव की माइयां पानी भर रही, और पानी के भरने से वो रस्सी के खींच से और पंगत पे घिसते पड़ गए थे, घसारा पड़ गया था, और जहां मिट्टी का मटका रखते थे वहां भी रखते रखते भी वहां घिसा हो गया। देखा कि कोमल रस्सी से कठोर पत्थर में भी रेखा पड़ जाती है, तो मेरे मस्तक में इतना पत्थर तो नहीं हूं, मेरे में विद्या की रेखा कोई नहीं पड़ेगी, मत मत जड़ मती हो तो सुझा चला गया। आपघात का विचार उसका हट गया, आ गया जंगल में, ध्यान धरूंगा तप करूंगा, तप करने को बैठा तो नंदी आ गया, भगवान शंकर का वाहन। इसने कहा कि अभी तो तप करे, लेकिन क्या चाहिए, किस लिए तप करते? बोले मुझे तो विद्या चाहिए। बोले भगवान शंकर समाधि में से उतरेंगे तब आनंद विभोर होकर तांडव नृत्य करेंगे, और नृत्य में डमरू बजाएंगे। तो सनकादि ऋषि ज्ञान सनकादि ऋषि जो है अपना अर्थ ले लेंगे, जिसकी जैसी जैसी कामना होगी उसको ऐसे ऐसा अर्थ समझ में आएगी। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद डंकम नव पंचवार मूर्धा तो कामा सनकादि सिद्धा नेत्रादि महर्षि शिव सूत्र जाल। तो डमरू जो बजाया था, डमरू के आवाज में 14 अक्षर उसने कल्प लिए, और उसी डमरू के आवाज में कल्पते हुए उसके अक्षर से उसने ग्रामर बनाया, और वो ग्रामर संस्कृत के जगत में जब से बना तब से लेकर अभी तक संस्कृत जगत में उसी ग्रामर का आधार से आदमी संस्कृत का शुरुआत करता है, लघु कंठ से लेकर आचार्य तक की पढ़ाई अभी तक उसी का ग्रामर काम आता है, ऐसा उसका दिमाग काम दे। नेहरू ने जब पानी नहीं, उस ऋषि का नाम, फिर वो ऋषि के नाम से प्रख्यात हुआ, पाणिनी मुनि, पाणिनी मुनि, पाणिनी मुनि के नाम से प्रसिद्ध। और पाणिनी मुनि का संस्कृत का एक ग्रामर देखकर नेहरू भी प्रभावित हुए कि किससे एक सूत्र बनाए जिसको अभी तक हेरफेर नहीं किया जा सकता, काटा नहीं जा सकता, उसे भाषा का सर्जन होता है संस्कृत भाषा, ऐसे सूत्र बनाए। बोलो, शिवजी की समाधि से उठे, उनके डमरू का आवाज सुनकर जो बारखड़ी बने हैं, जो सूत्र बने हैं, वो संस्कृत जगत की नींव हो गई, ग्रामर की, संस्कृत के ग्रामर की नींव बन गई। ध्यान तो ध्यान है, लेकिन ध्यान करने वालों के हिलचाल भगवान शिव की हिलचाल संसार के लिए महारत्न ग्रामर का मिला। बुद्धि जितनी जितनी तो संसारिक कोई आग्रह नहीं रहता बुद्धि। जो लोग ज्यादा जिद्दी झक्की होते ना वो अल्प बुद्धि के होते, मूर्ख। ये झक्की जिद्दी अब बिंद्रा तो खास है, जितना आदमी छोटा ना बिंद्र वो तो जिद्दी है। बिंद्र के ज्ञान से साक्षात्कार से मुश्किल, बिंद्रो बड़े संद्रो का ला न पुजे चौणी बाय। तो ये कहावत जो कहा बड़ों ने, कईयों का अनुभव कहा होगा, जिद्दी मानो बड़ी मदद देता है। चलो मन पवित्र होता है, बुद्धि का विकास होता है। बुद्धिमान पुरुषों के संग से भी बुद्धि का विकास होता है। 14 से 21 साल की उम्र में जितना विकास हो गया, जितना कोई करना चाहे कर सकता है। तीसरे जो 7 साल है ना बुद्धि के लिए तक शरीर, 14 से 21 के बीच जितना विकास कोई करना चाहे कर सकता है। पर जिद्द के दायरे में रहता हूँ, धक्का खाए भोग बढ़ते या गोड़ा गाड़े। अरे थे देखो पछताणु बनो ना, 1.5 साल का पे वो तो वही भगवान धरती भी उसी की है, किरण भी उसी के पी रहा हूँ, जल भी उसी का बनाया पी रहा हूँ, मेरा क्या है? ये यश परमात्मा को जाता है, मेरा नहीं। बोलता हूँ मैं और खुश हो गए, बोले फिर तो हम आपको देखे जाएंगे, तो माफ करो, ईश्वर का यश होने दो। लोग ईश्वर का गुणगान करके मुक्त हो जाए, ईश्वर का चिंतन करके लोगों का उद्धार हो जाए, बीच में मेरे को मत आने। तो फिर देवता तो चुप हो गए, लेकिन देना तो जरूर है। ऐसे आदमी के पास शक्तियां होगी तो अच्छा ही है, अहंकारी के पास होगा तो गुलम करेगा। महापुरुष है, पवित्र आत्मा है, चलो। देवताओं ने सोचा, देवताओं ने सोचा अच्छा महाराज आपको पता न चले और हम आपको ऐसी शक्ति दे देते तो आप जहां से गुजरो और आपकी छाया जिस पर पड़े वो तो हरा भरा हो जाए, व्यक्ति हो तो रोग मुक्त हो जाए, दरिद्र हो तो धनवान बन जाए, वृक्ष सूखा हो तो फिर पनप जाए, फल न लगते हो तो फल लगने लग जाए, आपकी छाया जहां पड़ी बस जय जय बस आनंद आनंद कर दे। लेकिन मेरे सामने वाली छाया कैसा नहीं होना चाहिए, मेरे पीछे होता रहे मुझे पता न चले ये वरदान जोड़ दो, मुझे पता न चले होता रहे ऐसा जोड़ दो। महात्मा गुजरते हैं, महात्मा का नाम गुम हो गया, पवित्र छाया वाला महात्मा, पवित्र छाया, पवित्र छाया, पवित्र छाया, इसका नाम ऐसा हो गया। ये बात रामकृष्ण ने बोला था, अमेरिका में बोला था यहां, ऐसे ऐसे महात्मा है। लोगों का मंगल है, लोग भगवान की तरफ चले यहां तक तो ठीक है, लेकिन महात्मा का जब व्यक्तिगत यश मिलने लगता है ना तो महात्मा के लिए खतरा हो जाता है। फिर वो समय शक्ति सब बाहर के जगत में खर्च होने लगता, ईश्वर के लिए समय बचता नहीं। इसलिए कई महात्मा है, शुद्ध शुद्ध महात्मा ने पागल जैसा वेश बना लेंगे, पागल जैसा रहने लगे, क्या लोग भाग जाए। ये गांधी तक का आया ना, बहुत खुश हो गए, चल गया कोई हो गएगा, जब माल मिठाई मेरा आ रहे रुपयों की थप्पियां लगे करते चले बहुत, अब ऐसे चले बह जाए बहुत मारू के मारा शुक्र तुम्हारा मारे भाग। तो गुरु ने वेश बना लिया कोहरी का, अंधे का, सब भाग गए, लेकिन चांदी तक टिकारा। मणिकर्णिका घाट पर पहुंच गया, गुरु जी ने कुटिया बनवा ली, रहने लगे, थोड़े दिन में कोल फुट निकला, ये कथा भी वो धर्मलोक वालों ने दिया, इसको पढ़ो फिर। ये कथा सुनने से अश्रद्धालु को श्रद्धा होती है, श्रद्धावान का उत्साह बढ़ता है, आदमी निर्दोष और निष्पाप होने लगता है। ऐसी कथाएं हैं,
ऐसा पवित्र जीवन दिया होगा।
आप तो शिष्य है, लेकिन कई गुरु उसकी गाथा गा चुके हैं। गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को भी सुनाया, दूसरों ने भी सुनाया, हमने भी सुनाया। गोरखनाथ ने भी ये गाथा गाया, बोलो। गोरखनाथ तो समर्थ गुरु थे और भारत का सम्राट उनका शिष्य था राजा भरतरी। पाकिस्तान तो बाद में हुआ 47 में, उसके पहले का विशाल भारत था, उस भारत देश का राजा था, बड़ा बहुत पवित्र राजा था राजा भरतरी। चार वेदों का जानकार था वो, गोरखनाथ के शिष्य हुए और गोरखनाथ की कृपा उन पर हुई तो उनको साक्षात्कार। ऐसे गोरखनाथ ने भी सांदीप का बयान किया है, बोलो। भारत का चक्रवर्ती सम्राट जिनका शिष्य है, ऐसे गुरु गोरखनाथ, और गोरखनाथ ने भी सांदीप का गाथा गाई है। मर पर मरे थे, अरे जब हो गया होगा, मणिकर्णिका घाट पर हजार वर्ष पहले, तब सांदीप को पता भी नहीं होगा कि साबरमती में आश्रम हो गए, आसाराम होंगे, तुम लोग आओगे और सांदीप का नाम सुनोगे, उसको तो खबर भी नहीं होगी। लेकिन क्या हुआ, सेवा है ना, क्या हुआ, भक्ति है, साधना व्यर्थ नहीं जाता। अभी तो लोग प्रशंसा कराने के लिए, प्रसिद्धि कराने के लिए कितना कुछ मत्था मारी कर, उनकी टिकती नहीं, और ऐसे पवित्र आत्माओं की प्रसिद्धि जाती नहीं, मिटती नहीं। अब क्या प्रयत्न किया, अब ये कथा तो हमने गाई कही, अब कहीं पुस्तक में छपी, अब पुस्तक में छपी तो ये धर्मलोक वालों ने उसमें से ये दे दी, हमको तो खबर भी नहीं, सांदीपक को भी खबर नहीं, मेरा को सचमुच खबर नहीं कि धर्मलोक वाले लेंगे ऐसा करेंगे, उसको जो करते छाता, एक अक्षर भी काटा नहीं, एक अक्षर भी मोड़ा जोड़ा नहीं, तोड़फोड़ नहीं किया, उसी लिए मैंने सुन रहा। गुरु गीता में आती है ये कथा सांदीपक की। अरे कितने, अरे कितने, ऐसी नहर है कि जहां चाहे उसको ले जा सकते हैं, उस स्मृति को चाहे संसार में ले जाओ, उसी स्मृति से चाहे बेचैनी ले आओ, उसी स्मृति से आनंद ले आओ, अथवा उसी स्मृति से परमात्मा को प्रकट करो। स्मृति जैसा मूल्यवान जीवन में और कुछ नहीं, और स्मृति जैसा खतरनाक और कुछ नहीं। स्मृति दुख की करो, स्मृति विकार की करो कल्पना, तो स्त्री ना होते हुए, विकारी चीज ना होते हुए भी आदमी विकारों में आ जाता है। वैशा के बीच, अप्सराओं के बीच गुलाब की शया बनी हो, पुष्पों की शया बनी हो, अत्तर छटे हो, आधुनिक भोग विकार चाहे पकड़े, फिर कितना भी करके उसको सब सुखों में गर्काव कर दो, वो अप्सरा के अप्सरा कर कंठ लगे, फूलों की शया हो, कामदेव का सब वातावरण हो, लेकिन हमारी स्मृति परमात्मा में लगी है तो कुछ नहीं कर सकता। वृत्ति हमारी सब अच्छा, हम भीड़ भड़ाके में हूं, नगारे बजते हूं, लेकिन हमारी वृत्ति किसी और चिंतन में लगी है तो हमको उसका ख्याल नहीं होता। हम मंदिर में बैठे हैं, आरती हो रही है, अगरबत्ती जल रही, धूप दीप से भगवान का आराधना करने वाले लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्मृति कोई गंदी जगह पे है तो हम वहीं हैं, मंदिर में नहीं। हम इस वक्त अच्छे पवित्र वातावरण में हैं, लेकिन स्मृति मन में द्वेष की हो रही है, राग की हो रही है, शंका की हो रही है, परीक्षा की हो रही है, तो इस वातावरण के शांति का अनुभव नहीं कर सकते है। तो वातावरण में शांति पाने के वाइब्रेशन पड़े हुए, फिर भी हम इस वातावरण का अनुभव नहीं कर सकते हैं, इसकी गरिमा को नहीं छू सकते, क्योंकि हमारी स्मृति अगर शंकाशील है, इधर उधर की है, अथवा हमारे मन में कोई संसार का प्रॉब्लम है तो हमको बाबा जी कब बुलाए, हम बात कब करें, वो स्मृति बनी रहेगी। लेकिन सत्संग कैच नहीं हो पाए। स्मृति में बड़ी शक्ति है। स्मृति एक ऐसी धारा, ऐसी पाइपलाइन है, तो रसोड़े में भी जाती है, बाथरूम में भी जाती है, पूजा गृह में भी जाती है और संन्यास में भी जाती है। पाइपलाइन ऐसी है। जीवन एक बाहर की धारा है, जीवन तो पसार हो रहा है, लेकिन स्मृति उसकी लाइनिंग करके उचित जगह पर ले जाए। जैसे गंगा जी का पानी आता है सागर की तरफ बहता है, नहरें बनाकर उसमें से गन्ना पैदा हो जाता है। जो खारा पानी होने को जा रहा है उससे ही गन्ना पैदा हो जाता है और कई जगह पर औषधियों के काम आता है। और उसी की नहर एक शाखा जाती है और लोग गंगे हर करके आनंदित होते हैं, पूजा करते हैं। एक शाखा ले गए हर की पेड़ी पर, दूसरी उधर भेज दी। ऐसे ही हमारी स्मृतियां हमारा जीवन का लक्ष्य बन जाती है। इसलिए स्मृति जैसी तैसी बात में लगाना नहीं, जैसी तैसी बातों को भरकर बेचैन होना नहीं। कई लोग थोड़ा सा दुख होता है लेकिन उस दुख को सुमरण करके अब भागवत खाली नहीं करता। अब भोले भाले आदमी, इज्जत वाले आदमी, अब भागवत कुछ ऐसे है जरा मियां भाई हैं, लुच्चे हैं, खाली नहीं करते। तो अब व्यक्ति आई बेचारी तो बोले बाबा जी हमारे तो ऐसा है, हम तो खोजा है, वो लोग ऐसे हैं। तो बात तो ठीक है लेकिन उसी बात को स्मरण करते 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 अपने को ज्यादा दुखी बनाए, अथवा तो उस स्मरण को ठीक व्यवहार के अनुसार जैसा जैसा होता हो पवित्र भाव से हो जाने दो, ऐसा उसका रास्ता निकालना अलग बात है। तो सुमरण कर करके घबरा जाना, सुमरण कर करके दुखी हो जाना, ये भी सुमरण के आदि है। और फिर सुमरण करके दुखी नहीं होना, सुमरण करके उचित मार्ग निकाल के निश्चिंत होना, ये भी सुमरण के आदि। मेरे को घाव हुआ, हाय रे मैं मर गया, अब मेरा क्या होगा, हाय रे घाव हुआ, ऐसा सुमरण करके मैं घाव को सपोर्ट दूं, ये भी तो स्मृति से होता है। और उसी वृत्ति से सोचूं कि इस घाव को अब बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे तो पहले तो इसको धो लेना चाहिए डिटॉल आदि से, फिर सम्प्रोमाइसन आदि मलम लगा देना चाहिए, ये भी तो स्मृति से होगा। अब वो ये स्मृति का उपयोग मैं डिटॉल, सम्प्रोमाइसन या और कोई दवाओं में स्मृति का उपयोग करके लगाता हूं तो मेरा कष्ट जल्दी दूर हो जाएगा, लेकिन मैं स्मृति करूंगा आए ये दर्द हो गया ओ आ ओ, तो इसको और मैं सपोर्ट दे दूंगा, अभी बढ़ जाएगा, मेरा मनोबल कम हो जाएगा, कीटाणुओं का मनोबल बढ़ जाएगा, रोग का बल बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही स्मृति को हमने संप्रोमाइसन ये रोग का उपयोग तो कर लिया, लेकिन फिर इस स्मृति को और ऊंची लगाए कि शरीर को रोग हुआ है, इस शरीर के रोग के प्रतिकारक दवाएं लग रही है, लेकिन जिस वक्त शरीर को रोग हुआ था उस वक्त भी चेतना मेरे परमात्मा की वही थी, रोग के वक्त भी उसका देखने वाला वही है, रोग मिट जाएगा तभी भी देखने वाला वही मेरा परमात्मा सत्य है, उसकी सत्ता से स्मृतियां होती है। हरिओम तत्सत और सब गत सत। तो ये रोग आया, दुख आया, दुख गया, स्वास्थ्य आया, स्वास्थ्य गया रहा, बीमारी आई, बीमारी रही, बीमारी गई, इस सब आने जाने को जो देखने वाला है मेरा आत्मा सत्य है। हरिओम तत्सत और सब गप सब। तो मैंने स्मृति का एकदम ऊंचा उपयोग किया। स्मृति में दुकान पे गया, ऑफिस में गया, अथवा मैं महिला हूं समझ लो, घर की रसोई बनाता हूं, रसोई हो रही है, अब रसोई में रसोई करते करते अथवा घर धंधा व्यवहार करते करते, धंधे व्यवहार घर में दिलचस्पी से तो काम करे, लेकिन वो दिलचस्पी से काम करने के बाद स्मृति अगर मेरी परमात्मा के प्रति है तो मैंने धंधा व्यवहार घर की रोटी बनाते हुए भी परमात्मा की भक्ति कर ली। और मैं घंटी बजा रहा हूँ और मेरे को स्मृति कोई विकार की है तो मैंने पूजा नहीं की, मैंने विकार की स्मृति को महत्व दिया, बढ़ा दिया। स्मृति का बहुत मूल्य है, तुम बाहर से क्या करते हो उसकी कोई ज्यादा कीमत नहीं है। तुम्हारी स्मृति का तुम कैसा उपयोग करते हो, तुम्हारे चिंतन का तुम कैसा उपयोग करते हो, उसी पर तुम्हारा भावी बन जाता है। ऐसा नहीं कोई देवी देवता वहां तुम्हारा भाग्य बना रहा है, उसके अनुसार तुम्हारा कुछ बन रहा है, नहीं। तुम्हारी जैसी जैसी स्मृतियां अंदर पड़ी है, जैसे जैसे संस्कार पड़े हैं, जैसी जैसी मान्यताएं पड़ी है, जिस जिस प्रकार की इच्छाएं पड़ी है, वो वाराफरती जैसे कैसे चलती है, तो जहां जो टॉन, जहां जो शब्द, जहां जो उपदेश, जहां जो तरंगे, उसने एकत्रित कर रखी है, कैसे का वो जगह आती है तो वो हम सुनते हैं। ऐसी हमारी स्मृति वृत्ति, स्मृतियों में अनंत जन्मों के जो संस्कार पड़े हैं, उस संस्कार के अनुसार वातावरण के संस्कार, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी के संस्कार, ये सब स्मृति में जॉइंट हो जाते हैं और फिर उसके अनुसार अपना स्वभाव बन जाता है और उसके अनुसार हम जगत को देखने लग जाते हैं। जगत की वास्तविक मौलिकता क्या है आज तक कोई नहीं समझ पाया। जो समझ पाए वो व्यक्ति नहीं बने, वो तो उनका व्यक्तित्व परमात्मा में मिट गया, वो ब्रह्मवेत्ता महापुरुष हो गए। जगत क्या है, जिनको ठीक समझ में आ गया वो मनुष्य शरीर में बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, वो परमहंस हो गए। बाकी के लोग स्मृति के अनुसार जैसी जिसकी भावना, अब तुम घर से चले आश्रम तक पहुंचे, रास्ते में कई ट्रैफिक के साधन देखे होंगे, गाड़ी, मोटर, रिक्शा, स्कूटर, लूना, साइकिल, बैलगाड़ी आदि आदि लोग भी कई देखे होंगे, लेकिन तुम्हें जिसके प्रति लगाव होगा, राग होगा, ऐसे व्यक्ति की स्मृति तुम्हारे पास होगी, अथवा जिसके प्रति द्वेष होगा ऐसे व्यक्ति या दृश्य की तुम्हारे अंदर स्मृति रही, बाकी का सब तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। घर से निकले यहां तक कई लोग दिखे होंगे लेकिन किसी की स्मृति नहीं, जिससे तुम्हारा परिचय था उसकी स्मृति रही, फलाना भाई मरा था, आंखों ने तो बहुत लोग देखे, जिससे तुम्हारा द्वेष था वो भी रहेगा, कि अरे चौदसिया का मुंह देखा है तो मजा नहीं आया, हेवानो मोड़ू जी ने जी से बापू मर से नहीं दही जोड़े मजा के आश आप कहीं पुण्य छे, तो वो स्मृति में वो भी आ रहा है और बापू भी आ रहे हैं, लेकिन बापू के सिवा और लोग भी थे, उसके सिवा और लोग भी थे, लेकिन बापू के प्रति लगाव था, उसके प्रति द्वेष था, ये दोनों स्मृति में रह गए, बाकी के कोई नहीं रहे। तो हमारी स्मृति राग और द्वेष क्रिएट करती है और राग और द्वेष क्रिएट करते करते उसी के संस्कार के अनुसार जहां जहां सुख का एहसास हुआ, जहां जहां सुखाभास हुआ वहां वहां हम खींच के गए, जहां दुखाभास हुआ वहां से धकेलने की वृत्ति हुई, हम बाहर के बाहर, सुख को पकड़ने के लिए भी हमारी वृत्ति बाहर गई, दुख को धकेलने के लिए भी हमारी वृत्ति बाहर रही, लेकिन वृत्ति का जो आधार है, वृत्ति का जो उद्गम स्थान है वो परमात्मा छूट गया और हम वृत्तियों में एक जन्म में नहीं कई जन्मों तक उस वृत्तियों में भटकते। अब ये वृत्ति भी तीन प्रकार की होती है, सत्व प्रधान, रज प्रधान, तमो प्रधान। प्रधान क्यों कहता हूं कि सत्व में रज होता है, तम होता है, लेकिन जो प्रधान होता है उसका प्रभाव पड़ता है। अब वृत्ति हमारी सत्व प्रधान क्रिएट हुई तो हम देवी देवताओं के लोक लोकांतर में जाएंगे, वृत्ति हमारी तम प्रधान हुई तो हम वृक्ष बनेंगे, पशु बनेंगे और उस वृत्ति के अनुसार हमारा जीवन पूरा हो जाए। वृत्ति हमारी रज प्रधान क्रिएट हुई तो फिर हम मनुष्य बनेंगे, उसमें भी परसेंटेज होता है, रज प्रधान है लेकिन उस रज प्रधान में हमारी वृत्तियों में ईश्वर की भक्ति, खुदा की बंदगी, परमात्मा की खोज अगर बनी है तो हम ऐसे वातावरण में, ऐसे माता पिता के कुल में हमारा जन्म करा देगी वो प्रकृति, ताकि हमारी फिर यात्रा होती। वृत्ति रजस है लेकिन हम विकारों में जीते हैं, हमारा काम विकार आदि आदि है, तो फिर हमको ऐसे ही कामी माता पिता के वातावरण में अथवा काम को पोषने वाले एटमॉस्फेयर में, भोगी विलासी देश में हमारा जन्म हो जाएगा। अगर विलासी देश में रहते रहते आदमी विलास से उब गया है और उसको भारत के प्रति आदर है, आकर्षण है, तो वो अमेरिका का अथवा विलासी कोई भी देश का, आबू दुबई का या इधर उधर का कामी विकार जहां अधिक भोगे जाते हैं, ऐसे देश में वो भोग भोग के आदमी उबता है तो फिर सोचता कि ऐसा करो, अब उसके करने के साधन ऐसे नहीं है और उसकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर उसकी वृत्ति में जिस प्रकार की स्मृति होगी कि ऐसा हो जाए तो अच्छा, यहाँ जाता तो अच्छा, यहाँ रहता तो अच्छा, तो फिर उसी को उसी देश में ऐसे वातावरण में फिर उसकी वृत्ति गर्भ में ले आती है जन्म। ऐसा कोई एक व्यक्ति उधर एक देव बैठकर जैसे चित्रगुप्त का चित्र दिखाते नहीं, तो जाड़ी बुद्धि के व्यक्तियों को समझाने के लिए ये कथाएं और चित्र कल्पे जाते हैं कि चित्रगुप्त सब तुम्हारा गुप्त रीत से चित्र ले रहा है। चित्रगुप्त का मतलब है कि हम जो भी कुछ करते हैं गुप्त रीत से हमारे वृत्तियां चित्रित हो जाती, हमारे संस्कार। एक व्यक्ति कोई सबका भाग्य लिखता हो तो असंभव है, दस व्यक्ति भी नहीं लिख सकते, हजार व्यक्ति भी सबका अकाउंट नहीं रख सकते। कीट है, पतंग है, मनुष्य है, कई कई लोग हैं, और एक आदमी का दूसरे आदमी में जब समझो कोई ऐसी पोस्ट है, 12 घंटे 8-8 घंटे की ड्यूटी है देव के वहां, तो भी ड्यूटी सौंपते समय उस पीरियड में भी दूसरे लोग तो कर्म करते होंगे। टिकट स्टेशन पर तो एक क्लर्क ड्यूटी सौंपता है टिकट बारी दूसरे को, तो आधा घंटा बंद हो जाती है, गाड़ी तो चालू रहती लेकिन टिकट लेन देन बंद हो जाता बारी। अतः एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर को चार्ज देता है तभी भी बंद हो जाता है उनका टिकट फाड़ना वाड़ना। लेकिन यहाँ तुम्हारा कर्म तो बंद नहीं होता, हम लोगों का 2400 घंटे हम लोग तो कर्म करते रहते, शरीर से करें मन से करें, और जहाँ इधर सुबह होता तो अमेरिका में रात होती, तो वहां भी तो कर्म तो चालू धमाधम, और रात को भी सब लोग थोड़े सो जाते, रात को भी तो कर्म होते। तो चित्रगुप्त को एक व्यक्ति या हजार व्यक्ति चित्र लिखते हो तो हजार हजार की तीन पाले तो 3000 व्यक्ति जब बदले तो लिखने में गलती भी तो हो सकती, फिर भी देखा जाए कि कर्म छोटा हो चाहे बड़ा हो हर व्यक्ति को फल दे देता है। हम छुपकर गुफाओं में कंदराओं में अगर शराब पीते या किसी का बुरा सोचते बुरा करते तो कोई नहीं देखता, फिर भी इन वृत्तियों के कारण हमारा विकास रुक जाता और हमको कोई पूछता नहीं, और हमको किसी ने नहीं देखा। हम जब तप करते थे साधना करते थे तुम में से किसी व्यक्ति ने मेरे को देखा नहीं कि बाबा ने साधना किया कि नहीं किया। दाढ़ी है बस, ऐसी दाढ़ी तो कई लोग बना सकते हैं, हम भी बना के बैठे हैं, लेकिन हमारी वृत्तियों को निवृत्त करने की पद्धति गुरुओं ने बताई, हमने शास्त्रों का गुरुओं का परमात्मा का अवलंबन लेकर उन वृत्तियों के खेल को जानकर उस वृत्तियों के उद्गम स्थान रूपी परमात्मा के शरण ली वृत्ति से ही तब तुम लोगों को लाभ एहसास होता है। तुमको लाभ मिलता है उसीलिए तुम आते हो। मेरा वेशभूषा देखकर तुम आते ऐसी बात नहीं, अथवा मैंने तप किया है ऐसा सोच के तुम नहीं आते, मैंने साधना किया है तो तुमने देखा नहीं, लेकिन फिर भी मेरी वृत्तियों से आपकी वृत्तियों को अच्छाई का एहसास होता है। तो आपके अंदर अच्छाई की आकांक्षा जो छुपी है, जिन लोगों के अंदर अपने कल्याण की अपने मंगल की आध्यात्मिकता की आकांक्षा छुपी है, वे लोग आध्यात्मिक व्यक्तियों की आध्यात्मिक व्यक्ति में आगे बढ़े वाले की वृत्ति और आध्यात्मिकता की इच्छा वाले की वृत्ति मेल खा जाएगी। जो लोग विलास में गाने बजाने में फिल्मी दुनिया में आगे बढ़े हैं तो उनकी वृत्ति उसमें आगे विकसित है, तो उस वृत्ति वाले लोग उधर टोला हो जाएंगे। कोई एक्टर आ जाएगा तो उस वृत्ति के लोग खींच के जाएंगे, तुम नहीं जाओगे, और कोई संत आएगा तो तुम जाओगे, वो लोग नहीं जाएंगे। तो एक दूसरे की वृत्तियां भी सजाती है, अपने भाई भाई में इतना प्रेम नहीं होता जितना दोस्त का होता है, क्योंकि वहां वृत्तियां एक दूसरे के अनुरूप होती। ब्लड में तो एक माँ बाप के भाई है, पुत्र है, संतान है, दो भाई, एक ही माता पिता और एक ही कुटुंब में, फिर भी भाई भाई का कई जगह देखा गया इतना मेल नहीं खाता जितना दूसरों का, भले जातीय रिलेशन ना हो, ब्लड रिलेशन ना हो, धंधा की रिलेशन नहीं हो, फिर भी जब वृत्तियां सेट होती है ना तो वृत्तियों का एकत्व होता है तो वहां आनंद आता है, मित्रता बनती है। अब जब वृत्तियां एक दूसरे से टकराती है तो आज तक जो मित्र था वो शत्रु जैसा दिखता है, आज तक उसके गुण दिख रहे थे लेकिन वृत्तियां टकरा गई, स्मृति वृत्ति टकरा गई तो उसके दोष दिखने लग जाते। तो ये वृत्तियों का खेल है, ऐसा समझ लिया जाए तो वृत्तियां जहां से उठती है उस परमात्मा की महिमा का पता चल जाए, और जिस परमात्मा की महिमा का पता चल जाए उसमें आदमी की वृत्ति, एक है जन्म दूसरा है मृत्यु, ऐसे एक है वृत्ति की उत्पत्ति और दूसरा है वृत्ति का नाश। हम वृत्ति की उत्पत्ति, उत्पत्ति तो परमात्मा से होती है लेकिन उसका व्यापार संसार में, उसका नाश संसार में करते हैं कि उसको मोड़कर परमात्मा मिला था। इस बात की अगर स्मृति बनी रहे तो जितना दरिद्र होना आसान है उतना ही आत्म खजाना पाना आसान हो जाता है। दरिद्र होने में क्या, मेरी मुड़ी सही कर दिया कि मेरा जो भी स्थावर जंगम मिलकत है सबके वारसदार फलां हो गए दरिद्र। जो 40 साल 30 साल 20 साल में जो कुछ कमाया, दरिद्र होना एक क्षण में। ऐसे ही कई जन्मों की वृत्तियां, कई जन्मों की स्मृतियां, कई जन्मों के संस्कार संभाल के रखेंगे तो कई जन्म और मिलेंगे, लेकिन मुक्त होना हो तो सब वृत्तियां परमात्मा को समर्पित करके परमात्मा जैसे वृत्तियों का उद्गम स्थान साक्षी है उस साक्षी भाव में आ जाओ, बेड़ा पार हो जाए। बड़ा आसान है। और ऐसी आसानी की कुंजी जनक ने पा ली थी, राजा जनक ने, तो घोड़े के पैंगड़े में पैर डालते डालते उसको साक्षात्कार हो गया, प्रभु के दर्शन हो गए। ऐसी वृत्ति सुखदेव जी मुनि के उपदेश से परीक्षा दराया राजा ने पा ली, पांचवें दिन थोड़ी कृपा मिली, सातवें दिन पूरी हजम हो गई, साक्षात्कार हो गया, परीक्षित मुक्त हो गया। खटवांग राजा महान धर्मात्मा थे, दीन दुखियों की सेवा करके आशीर्वाद पाया था, साधु संतों की दुआ पाकर बुद्धि का विकास हुआ था। इतने वो विशाल राजा के राजा होते थे, उनका प्रभाव ऐसा था कि मनुष्य मात्र तो उनका प्रभाव से प्रभावित था लेकिन देवता लोग भी उनके प्रभाव को जानते थे। देवताओं पर जब दैत्य टूट पड़ते तो वो देवता इस महारथी की शरण आते और देवता उनको बोलते कि हमको सहयोग करो। तो मनुष्य देवलोकों में देवताओं को सहयोग देने का बल था उसमें, और कई बार देवताओं को सहयोग दिया, साथ दिया, देवता खुश हुए, देवताओं का विजय हुआ। तो देवताओं ने खटवांग राजा से पूछा कि अब तुम स्वर्ग का कुछ वैभव मांगना चाहते हो, कुछ आशीर्वाद मांगना चाहो तो ले लो। देवताओं में संकल्प बल होता है, वो जैसा आशीर्वाद दे ऐसा प्राकृतिक भोग मिल जाते हैं, उसकी सीमा होती है अपनी। जैसे कलेक्टर के पद की अपनी सीमा है, जिला पूर्ति, चीफ मिनिस्टर की अपनी सीमा है, प्राइम मिनिस्टर की अपनी सीमा है, सीमा जरूर है उनकी, प्राइम मिनिस्टर तब भी सीमा है। कुछ काम तो अपना मनमाना कर सकते हैं लेकिन कुछ लोकमत के खिलाफ, अत्यंत लोकमत के खिलाफ होता है तो नहीं सफल होते, नहीं कर पाते। प्राइम मिनिस्टर चाहे कि बिना फिगल के हमारा प्लान चल जाए तो नहीं चलेगा। प्राइम मिनिस्टर चाहे हम वो कैसा हो जाए कि जो प्रकृति के असंगत हो तो नहीं हो सकेगा। तो ऐसे ही देवताओं का भी कुछ अपनी मर्यादा होती है, सबकी होती है, सीमा होती है शक्तियों की, संकल्पों की। तो उसके अनुसार देवता लोग संकल्प करे ऐसा भोग मिल सकता है, अमृत मिल सकता है, आयुष्य मनुष्य लोक में जो आयुष्य है उसको देवता लोक नहीं बढ़ा सकते, उनकी सीमा होती बढ़ाने की, हर चीज की उनकी अपनी अपनी मर्यादा होती है। तुमको क्या भोग चाहिए, क्या वस्तु चाहिए, देवताओं ने आग्रह किया तो खटवांग राजा बोलता है कि भोग सुख भोगने के लिए तो शरीर चाहिए। अब मेरे शरीर तो है, शरीर की आयुष्य कितनी है जरा मेरे को देख के दो, तब तो मांगू। और देवताओं ने देखा कि आयुष्य तो दो मुहूर्त, दो मुहूर्त बेचो बढ़िया 3 कलाक है। बोला 3 कलाक जीना है तो तुम्हारे से क्या भोग मांगू, मुझे जल्दी से मृत्यु लोक में पहुंचा दे। और बता ऐसा कोई आत्मज्ञानी महापुरुष एक मुहूर्त में तो पहुंचे और महापुरुष तक, मृत्यु लोक में पहुंचे और महापुरुष तक, और दूसरे मुहूर्त में साक्षात्कार कर लिया, वृत्तियों को जान लिया, वृत्तियों के आधार स्वरूप उस पर ब्रह्म परमात्मा अहम ब्रह्मास्मि उस ब्रह्म को, चैतन्य ईश्वर को, जिसकी सत्ता से तुम्हारा दिल धबकारे ले रहा है, जिसकी सत्ता से मेरी वाणी चल रही है, जिस परमात्मा की सत्ता से तुम्हारे कान सुन सकते हैं, जिस परमात्मा की सत्ता से तुम्हारी आंख देख रही है, उसी की सत्ता से मेरी आंख देख रही है। ये शरीर के स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन वो मेरा परमात्मा तो वही सत्ता सत्ता मात्र एक है। ब्लब अनेक है, पंखे अनेक कंपनियों के, अनेक साइज के, लेकिन पावर एक का एक। ऐसे हम लोग साधन अनेक के अनेक, लेकिन सत्ता एक की एक। तो सत्ता मात्र, जहाँ से वृत्तियां उठती है उस वृत्तियों में स्थिति आ गई, उस वृत्तियों का आधार में स्थिति आ गई, साक्षात्कार हो गया, मुक्त हो गया। अब फिर उनकी वृत्तियां बची नहीं, जल गई। घर को भरा है 50 साल से, 1000 वर्ष से गोदाम भरा है, लेकिन आग लगाने में देख सका नहीं लगता है। ऐसे ही मुक्त होने में देर नहीं, मुक्त होने की तीव्रता हो और मुक्ति दिलाने वाले महापुरुष का संयोग, ये दो बातें बड़ी दुर्लभ। एक तो तीव्रता नहीं है प्रभु के दर्शन की, दूसरा ऐसे महापुरुषों का सहयोग नहीं, और तीसरी कठिनाई है कि हम आत्म साक्षात्कार करने गए, प्रभु के दर्शन करने को अपने को योग्य नहीं मान रहे। चौथी बात, संसार की आसक्ति नहीं छूटती और वृत्तियों में भरी हुई है, स्मृतियों में भरी हुई है। आम थाए तो सारो, हटलू थाए तो सारो, पर जेने थी चेनुशु, नौकरी नहीं हो बोलता, नौकरी मिल जाए तो निराश, नौकरी जिनको मिला उनको देखो, और प्रमोशन हो जाए तो निराश, प्रमोशन हुआ क्या और प्रमोशन हो जाए तो निराश, छोकरा हो जाए तो निराश, छोकरा हो गया बोले पढ़े तो निराश, पढ़ा उसको लादी मिले तो निराश, अब छोकरे को छोकरा आए तो निराश, फिर काका से पूछो क्या हाल है, बोले बाप जी संसार में कोई ना, ले आटल अटलू थे पी हमें शू कोई ना, हतु घणु पर वृत्ति ने स्मृति ने ज्यादा लगवी जो थी ત્યાં લગાવી નહી અને બહાર વિખેરી નાખે, એટલે બંધાણા કામના પોટલા ઉપાડીને હવે મરવા હેડ્યા, કે બાપજી તો મરી જઈએ તો નિરાશ થાય, મર્યામાં કાકા નિરાશ નથી, આ પોટલી હાથે છે ને, વૃત્તિઓ કા સંસ્કારો કા પોટલા જો હૈ વો મરને કે બાદ ભી ચેન નહીં લેને દેગા, કર્મ અત્યંત દૂષિત હૈ તો દૂસરા શરીર નહીં મિલેગા, વૃત્તિયા બની રહેગી, ઉન વૃત્તિઓ કો પોષને કે લિયે કિસી દુર્બળ આદમી કે મન મે, દુર્બળ સ્ત્રી કે મન મે ઘૂસ જાઓગે, वहां प्रेत होके उनको सताओगे। अभी अभी एक माया आई थी ना, उसको पति ले आया था, तुम लोगों ने देखा, मैं इसकी कुल देवी हूँ, आपका मंत्र ले आया, मेरी पूजा नहीं करती है इसलिए मैं उसको सताती हूँ। अब तो कुल देवी है और मंत्र लेती है तो फिर उसका आत्म कल्याण करने दे बेचारे को, बोले उसका तो कल्याण होगा लेकिन मेरा, मेरी पूजा, मेरा तो ग्राहक छूटता है। तो ये कुल देविया मूल देविया कोई प्रभु नहीं है, ये भी मनुष्य में से थोड़ी सुयोग्य हुई होगी और बन गई होगी कुल देविया, भटकते आकाश में, कोई पूजा करो, कोई सेवा करो, संतुष्ट सेवा पूजा बंद करो तो उसको तंग करना। ईश्वर को तुम 1000 गाली दो फिर भी तुम्हारे को प्रकाश देना बंद नहीं करता। परमात्मा वो है कि तुम दो तो भी कुछ नहीं, कुछ न दो ऊपर से उनको, उनके साथ वेर बांधो तो भी कल्याण कर देता है। दंत वक्र शिशुपाल ने, कंस ने, रावण ने भगवान के साथ वेर बांधा तो भी कल्याण हो गया। ये देवी देवताओं के साथ तो उनको खिलाते रहो, देते रहो, उनके आगे गिड़गिड़ाते रहो, ये कुल देवियां तुम्हारे पर सवार, नेता जैसे होते हैं लोग। एक नेता ने दर्जी से फुल सूट सिलवाया और दर्जी का भी नया नया दुकान था, बड़ा अच्छी जगह पे खुला था, उसने बेचारे ने शिफ्ट किया था एक राज्य में से दूसरे राज्य में आया था, पूरा मन लगा के बनाया उसका फुल कोट, फुल सूट, सूट कोट हर नेता ने पहरा, बड़ा खुश हुआ, अरे क्या माप है, क्या बराबर सिलाई, बहुत खुश हो गया, उसको धन्यवाद दिया। लेकिन एक आध चौंका नेता, बोले इसमें खिसा क्यों नहीं, उसमें खिसा क्यों नहीं, बोले नेता का अपने खिसे में हाथ जाता ही नहीं, दूसरों के खिसे में हाथ जाता, जो नेता लोग होते ना दूसरों के खिसे में हाथ रखते हैं, इसीलिए आपके कोट में हाथ नहीं रखा, खिसा नहीं रखा। तो ये जो देवी देवता है ना और दूसरे लोग स्वधा स्वाहा करें उससे भोग भोगते अपना नहीं। यज्ञ में कोई भाग दे, घर में कोई कुल देवी की पूजा करे, लेकिन भगवान परमात्मा जो है परब्रह्म, ओ तो उसको तुम पूजा करो चाहे उसकी सत्ता लेके विपरीत करो, फिर भी वो कभी तुम्हारे से मुंह नहीं मोड़ता। वो ईश्वर हमसे कभी अलग हो नहीं सकता, होना चाहे तो भी नहीं हो सकता, ऐसा वो बैठ गया है। ईश्वर हमसे अलग होना चाहे तो भी नहीं हो सकता। मछली तो पानी से अलग हो सकती है दो मिनट के लिए, एक मिनट के लिए, लेकिन हम परमात्मा से अलग नहीं हो सकते। वो ऐसे भरा है, मरने के बाद भी हमारा वो साथ नहीं छोड़ता। दुर्भाग्य कि हम उसको जानते नहीं, उसलिए दरिद्र है, जानते नहीं उसलिए जन्म ले रहे हैं, जानते नहीं उसलिए हम दुखी हैं, जानते नहीं उसलिए हम लाचार हैं, उसको पीठ दिए हुए हैं, लेकिन उसने हमको पीठ नहीं दिया। हवाएं होकर वो बह रहा है, आकाश उसकी सत्ता है, आकाश में उसी की सत्ता है, सूर्य में उसी की सत्ता, अब कहां छुपेगा? मां में उसी की सत्ता, बाप में उसी की सत्ता, रसो अप्सु कौंते प्रभास्मि शशि सूर्य हो प्रणव सर्व वेदेशु शब्द खय पुरुषम नृषु। जल में रस मैं हूं, सूर्य में, चंद्रमा में, प्रभा में हूं, आकाश में शब्द मैं हूं, पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूं, वेदों में ओमकार मैं हूं। तो ईश्वर हमसे दूर होना चाहे, ईश्वर हमसे अलग होना चाहे, तो ईश्वर के बस की बात नहीं है। लेकिन हम लोगों के दुर्भाग्य कि हमारी स्मृति संसार में फैल गई, हमारी स्मृति की धारा जो है देह में और देह के अनुकूलता में चली गई, और जहां से स्मृति वृत्ति प्रकट होती है वहां हम अंतर्मुख नहीं हुए, इसीलिए हमको दुख भोगने पड़ते हैं। 50 साल उम्र हमने गंवाई, 50 साल टाइम देकर, समय देकर रुपये कमाए जाते हैं, समय देकर यश कमाया जाता है, समय देकर फ्रिज लाया जाता है, समय देकर घर में फर्नीचर सजाया जाता है, समय देकर मकान बनाया जाता है, समय देकर स्वर्ग के लिए कुछ कर दिया जाता है। ये समय देकर सब कुछ कर सकते हैं। अब सब कुछ एकत्रित करो, फिर समय मांगो तो उतना मिलेगा नहीं, उसका सौमय सा वर्तर नहीं मिलेगा। हमने 50 साल आयुष्य का संसारी भोग एकत्रित करने में लगा दिए, अब सब भोग देकर 50 घंटे हम ज्यादा जीना चाहें तो इम्पॉसिबल है, 50 मिनट भी हम आयुष्य ज्यादा लेना चाहें तो नहीं ले सकते। अपमृत्यु टल सकती है लेकिन आयुष्य फिर नहीं बढ़ती जितने स्वास्थ्य खर्च हो गए। दुआ से, भगवान की दुआ से, संतों की दुआ से अपमृत्यु, एक्सीडेंट, शूली में से कांटा हो सकते हैं, लेकिन आयुष्य तो संत की भी पूरी हो जाती तो चल देते हैं, अवतार भी चल देते हैं। तुम 50, 60 वर्ष, 80 वर्ष, 30 वर्ष जितना भी संसार में समय देते हैं और जो कुछ हम एकत्रित करते हैं वो सब देकर 50 घंटे हम ज्यादा नहीं जी सकते, 50 मिनट भी हम ज्यादा नहीं जी सकते। अब वो समय हम वृत्तियों को, संसार को एकत्रित करने में नाश कर देते हैं तो वो और वृत्तियां स्मृतियां बनी रहती और उसके अनुसार जन्म की यात्रा होती। अगर हमारे पास थोड़ा भी परमात्मा के लिए तड़प है, जिज्ञासा है और संसार नश्वर है, पहले नहीं था हमारे पास संसार की सामग्री, पहले नहीं थी, जो पहले नहीं थी वो आ भी गई तो नहीं के तरफ जाएगी। अभी मिठाई कपड़ी का मेरे पास पहले नहीं था, अंगूर आपने रखे लोगों ने, मेरे पास नहीं थे, अब मैं खाऊं चाहे न खाऊं लेकिन ये नहीं के तरफ जाएंगे, खाऊंगा तभी भी नहीं हो जाएंगे, अब पड़े पड़े भी नहीं के तरफ जा रहे, सड़ेंगे, गलेंगे, नाश होंगे। ऐसे ही शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, मित्र, कुटुंबी, परिवार जो भी दिखता है पहले नहीं था तो नहीं के तरफ ही जा रहा है, श्वास श्वास में नहीं के तरफ गए, जैसे बर्फ का पार्सल बूंद 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 गलता जा रहा है, ऐसे हमारा एक एक क्षण आयुष्य गलता जा रहा है, पता भी नहीं चलता। आप घर से चले तो उस समय जो आपके आयुष्य का जत्था था प्राणों का, अभी उतना नहीं रहा, कुछ खर्च हो गया। यही टाइम कीमती है, जिसको टाइम को देकर आप बहुत कुछ पा सकते हो, लेकिन बहुत कुछ देकर टाइम नहीं पा सकते। उस टाइम को वृत्ति का आधार परमात्मा, उसमें लगाओ तो तुम्हारी मर्जी, और उसी टाइम को ये छोड़ जाने वाले पदार्थों को संभालने में और एकत्रित करने में बढ़ाने में लगाओ तुम्हारी मर्जी। इसलिए मनुष्य को स्वतंत्र रखा, कर्म प्रधान, जैसा कर्म करे ऐसी उसकी यात्रा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे तैसा फल चाखा। सुकृत अच्छे कर्म है, अभी सुख मिल रहा है, लेकिन आप दूषित कर्म कर रहे हैं फिर भी सुखी हैं, तो अच्छे कर्मों का पीरियड चालू है। आज जब अच्छे कर्मों ने करवट ली, कवर पर जाते तो ऐसा नहीं कि कोई वहां लिख रहा है, हमारे सब कर्म कोई नहीं देखे फिर भी वो स्मृति बनाने वाला दृष्टा का परमात्मा का ऐसा उसमें आयोजन है ऑटोमेटिक। हम सब कर्म करते तो ऐसी बुद्धि देता है, ऐसी प्रेरणा देता है कि हमारा और प्रोग्रेस हो और उसके करीब हो, और हम दूषित कर्म करते हैं नमाम में दुष्चरित्र, मेरे को दुष्चरित्र व्यक्ति नहीं भजते हैं दूषित कर्म करने वाले, क्योंकि उनकी बुद्धि मलिन हो जाती। तो हम अच्छे कर्म करते तो कोई देवी देवता हमारा हाथ पकड़ के हमको स्वर्ग में नहीं ले जाता, बुरे कर्म करने से कोई राक्षस आके हमारा गला नहीं दबाता, लेकिन अच्छे कर्म करने से हमारे बुद्धि में सद्प्रेरणा मिलती है और अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं, और दूषित कर्म करने से हमारी बुद्धि मलिन होती है और देर सवेर ऐसे हमारे से कर्म हो जाते हैं कि हम फंस जाते हैं, अथवा हम फंसने के लिए तो कर्म नहीं करते, पैसे वैसे रुपए डॉलर ले जाके परदेश में रख के अपना आइंदा बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर सेल टैक्स के कस्टम वाले के अंदर भी परमात्मा वृत्ति फुरा देता कि मैं फिर से चेक करो, आपको प्रकरण चालू थी जाए। आने वाले साधकों को, हनुमान जी के मंदिर में आने वाले भक्तों को, अर्चन करने वाले लोगों के प्रति किसी का वृत्ति निकला होगा कहे इसको कोई मिल जाए, तो ये सारा संसार का जो खेल है ये वृत्तियों का। तुलसी हाय गरीब की कबौन खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। आओ चमड़ा मरे ढोर के चमड़ा से लोहा भस्म हो जाता है, हवा निकलती उससे अग्नि धोखनी चलती, ऐसे उफ निकलता है वो भी तो वृत्तियों से, वो भूमंडल में फैल जाता है और देर सवेर हो जाते। अभिज्ञानी बोलते हैं, अब दिल्ली रेड ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से वचन ब्रॉडकास्ट होते हैं, 2-3 सेकंड में यहाँ आ जाते हैं, गुजरात तक पहुंच जाते हैं 2-2.5 सेकंड में, 3 सेकंड में वो शब्द निकला है, जो अभी निकला शब्द 3 सेकंड के बाद जो पकड़ा जा सकता है जीवित रहता है, तो 3 दिन के बाद भी पकड़ा जा सकता है यंत्र का विकास हो तो। जो 3 दिन के बाद पकड़ा जा सकता है वो 3 वर्ष के बाद भी पकड़ा जा सकता है, 5 वर्ष के बाद भी पकड़ा जा सकता है, और जो 5 वर्ष के बाद पकड़ा जा सकता है यंत्रों का विकास हो तो 5000 वर्ष के बाद भी पकड़ा जा सकता है। उनका ऐसा मानना है कि यंत्र विकसित हुए तो हो सकता है कि अर्जुन की गीता, कृष्ण की गीता, अर्जुन का प्रश्न उत्तर वो भी शायद हम पकड़ लें। तो ये शब्द जो है अभी हम जो बोल रहे हैं, हमारे पास मर्यादित साधन है, उसलिए हम इतने लोग सुनते हैं, फिर भी ये शब्द मेरा नाश नहीं हो रहा है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म ऊंचाई पे चला जाएगा और वहां पड़ा रहेगा, नाश नहीं होगा, चाहे 1000 वर्ष हो जाए चाहे 10000 वर्ष हो जाए। तो श्री कृष्ण कहते हैं, रसो अपसु कौंतेय प्रभासनी शशि सूर्य प्रणव सर्व वेदेशु शब्द खय पुरुषम ऋषु, माना आकाश में जो शब्द है वो शाश्वत है, वो शब्द मैं हूं, अब उठता है उसकी सत्ता से वो नाश नहीं होता, हमें नहीं दिखती जो चीजें उसे उसको हम नाश समझते हैं, लेकिन नाश किसी वस्तु का नहीं होता। एक रजकण का, एक राय के दाने का, क्या रेतिक का नाश कोई सब विज्ञानी मिलकर भी नहीं कर सकते, अदृश्य कर देंगे, रूपांतर कर देंगे, लेकिन नाश नहीं होगा। तो जो अविनाशी तत्व है उस अविनाशी की सत्ता से जो कुछ है वो अविनाशी है, लेकिन हमारी कल्पनाओं से उसका मेल जोड़ उसका बांध छोड़ जो है ना, हमारे बांधा हुआ है तो हम बोलते हैं कि अपना है, और बांधा बिखर गया तो बोलते नाश हो गया। अब शरीर का बांधा है मेरा, मेरे कुटुंबी का प्यार मेरा है, लेकिन अब बिखर गए तो जहाँ से आया था उसी में जी रहा है, उसी में बिखरा है, लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गया, हम समझते आ रहे हाय नाश हो गया। अब हम मरे तो हमारे अंदर जो आकाश तत्व है महाआकाश में मिल जाएगा, हमारे शरीर में जो जल तत्व है बाष्प बन के उड़ जाएगा, गाड़ दो तो स्टीम होकर निकल जाएगा जमीन को फाड़ के भी। अथवा तो गैरेज नीचे चला जाएगा, जल तत्व जल में मिलेगा, हमारे शरीर में जो जल का खून में जो जल का हिस्सा है, हमारे शरीर में जो आकाश है वो आकाश में मिल जाएगा, हमारे शरीर में जो तेज है वो तेज में मिल जाएगा, फिर वो जल चाहे गंगा होके फिर बहे समुद्र तक पहुंचे ऐसे ही कहीं और रूप में उसका काम आ जाए, बाकी शरीर का जो खातर बनेगा हड्डियां तो कहीं न कहीं खातर के रूप